ओम शांति। गुड मॉर्निंग। एक बाबा तेरा साथ हो और कुछ नहीं, यही तो संगम युग है। एक बाबा दूसरा न कोई, भक्ति मार्ग में कहते आए, लेकिन अनुभव प्रैक्टिकल में केवल संगम में करते हैं और केवल हम ब्राह्मण बच्चे बाकी तो भगवान को ही नहीं जानते हैं दूसरे लोग। तो एक बाबा का साथ के लिए हमको कितनी मेहनत करनी पड़ती। नहीं, पहचान है, ज्ञान है, योगी भी है, सच्चे ब्राह्मण भी है, फिर भी बाबा को घड़ी घड़ी पल पल याद करें, उसी की मेहनत करते रहते हैं। सभी लोग उसी के लिए लगे हुए हैं। तो आज हमारे भट्टी का तीसरा दिन है और आज निश्चित रूप से संपन्नता को पाना है। आज के भट्टी से हमें कंप्लीट अपने अंदर वो शक्ति भरना है। तो ऐसे शक्ति भरने के लिए जो हम गाने सुनते हैं, है ना, तो ये सब मोस्टली सभी गाने की रचना हमारे सतीश भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि ये टीम का नाम ही मधुरवाणी ग्रुप। हमारे मधुवन का मधुरवाणी बहुत ही फेमस है और शुरुआत हमारे सतीश भाई जी से ही। मधुरवाणी माना ही सतीश भाई माना मधुरवाणी। बाकी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन बाबा उन्होंने बाबा की वाणी का जो अध्ययन करके कैसे बाबा से दिल की लगन लगाना गीतों के माध्यम से, जैसे रमणी कथा से भगवान को साथी कैसे बनाना, कैसे भगवान की याद की शक्ति भरना, गाने के माध्यम से हम सबको अनुभव कराते रहते हैं। तो न जाने कितनी आत्माएं उन गीतों से ही बाबा के बन जाते हैं, उन गीतों से ही महातपस्वी बन जाते हैं। तो ये सारा श्रेय सतीश भाई को जाता है। तो आज हम सतीश भाई जी से सुनेंगे अमृत वेले का महत्व, बहुत अच्छे से शक्ति भर लेंगे। आदरणीय सतीश भाई जी।
ओम शांति। अमृत वेले बुला रहा कोई मीठे बच्चे कहकर जगा रहा कोई, किरणों की बाहों में समा रहा कोई, मिलन की ज्वाला जला गया कोई, अमृत वेले बुला रहा कोई। आवाज ऐसी न पहले सुनी थी, स्नेहिल सुरों के सरगम से सजी थी, दूसरी ही दुनिया दिखा गया कोई, अमृत वेले बुला गया कोई, मीठे बच्चे कहकर जगा गया कोई। चेहरे पर खुशियां, आंखों में खुमारी, रत्नों से भर गया झोलियां हमारी, मीठे मीठी मुरली सुना रहा कोई, मिलन की ज्वाला जला रहा कोई, अमृत वेले बुला रहा कोई। होके मुजस्सिम ख्यालों को संवारे, क्या सोते जगते ख्वाबों में हमारे, सपने सच सारे बना रहा कोई, मिलन की ज्वाला जला रहा कोई, अमृत वेले बुला रहा कोई। सबसे वो दूर पर मेरे तो करीब है, उसको भी नाज देख मेरा नसीब है, मेरी तो दुनिया सजा रहा कोई, अमृत वेले बुला रहा कोई, किरणों की बाहों में समा रहा कोई, मीठे बच्चे कह जगा रहा कोई, मिलन की ज्वाला जला रहा कोई, अमृत वेले बुला रहा कोई। बुला रहा। रोज सवेरा होता है, हम सब प्यारे बाबा की आवाज सुनते हैं, मेरे लाडले जागो। ब्राह्मणों की दिनचर्या में संगम युग विशेष है, आगे बढ़ने से पहले आज की मुरली का जरा सिंहावलोकन कर लेते हैं, और सब सुनाने से पहले जो बाबा सुनाए हैं उसको रिपीट कर लेते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है। क्यों लव है? क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है और तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा, मेरा बाबा। किसी भी देहधारी मनुष्य की बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि बाप के एक एक बोल महावाक्य हैं, जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। और बाप के महावाक्य सुनकर के तुम गुलगुल फूल बन जाते हो। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, क्योंकि उनको सुनने से हम नीचे ही गिरते आते हैं। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, ये दुनिया वाले भी कहते हैं अलग अलग रंग से। धारणा सारे बाबा कहते हैं, अपने आप से प्रतिज्ञा करो। किस बात की प्रतिज्ञा करो? प्रतिज्ञा करो कि हम सच्ची कमाई करेंगे, स्वयं को सतो प्रधान, स्वयं को सतयुग में चलने के लायक, सुखधाम में चलने के लायक बनाएंगे, सर्विस करके, सपोर्ट बन करके, सबको साथ में लेकर के लायक बना करके, अपने आप को लायक बनाकर क्या करेंगे? बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरी बात कही बाबा ने कि रहम दिल बन, तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। और क्या करना है? सबका कल्याण करना है। और भी कुछ करना है? मौत से पहले सबको बाप की याद दिलानी है, है ना? दुनिया में भी कहते हैं ऐसा है, याद दिलाऊंगा कि बात में पूछिए। तो सबको बाबा का मैसेज देना है। वरदान है हर मनुष्य आत्मा को उसके तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। दिव्य दर्पण है हम सब। स्लोगन क्या है? जी जी, बहुत अच्छे महावाक्य आप सबने सुने। मैं समझता हूं कि जब भी हम बात करें, चाहे वो क्लास हो चाहे वो मिलना हो, तो अपनी दिनचर्या का आदि अगर हम बाबा के महावाक्यों से शुरू करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत उत्तम होता है। हमने दादियों को देखा है, आप सबने भी देखा है कि दादियों के पास जाओ तो दादियां और कोई बात नहीं करना, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, शुरुआत वहां से होती रही। तो जरूर हम इसको दोहरा लिया करें। आपको कुछ अनुभव की बातें और प्रायः परिचय में बताते हैं कि जैसा कल भी मैं बता रहा था कि अमृत वेला मेरा विषय अपना विशेष रहा है। पिछले 45 वर्ष हो गए मधुबन में रहते हुए, और जब से आए तब से ये लक्ष्य बनाया कि जो मधुबन की दिनचर्या होनी चाहिए वही अपनी दिनचर्या होनी चाहिए। अब मैं मधुबन निवासी हूं, हमें देखकर कोई ये न कहे कि ये मधुबन निवासी के लक्षण है। तो मधुबन की दिनचर्या है अमृत वेला रोज। बाबा कहते हैं कि बच्चे कम से कम 3:30 बजे जब रिकॉर्ड बजता है तो उठ जाओ, शक्तिशाली अमृत वेला अर्थात शक्तिशाली संगम युग, क्योंकि संगम युग सारा अमृत वेला है। बाप दादा प्रायः वाणियों में अमृत वेले को बहुत महत्व देते हैं। हमने दादियों को देखा, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के बारे में हम सब जानते हैं, बाबा ने कैसे हम सबकी दिनचर्या का ये प्रमुख अंग बना दिया कि अमृत वेले को शक्तिशाली बनाना है, और वही हमारे दिनचर्या का आधार होता है। शक्तिशाली अमृत वेला हमारी दिनचर्या को शक्तिशाली बना देता है। शक्तिशाली दिनचर्या हमारे अमृत वेला को शक्तिशाली बनाएगी। कोई कहे कि अमृत वेला बहुत पावरफुल हम कर ले, बाकी दिन में अटेंशन ना दे, असर जरूर होता है लेकिन उसका आधार अमृत वेला बनता है, फिर भी दिनचर्या में अटेंशन तो रखना ही पड़ता है। लेकिन शक्तिशाली अमृत वेला का मतलब यह है कि आपको उड़ती कला के पंख लग गए, अब आपको उड़ना जरूर है। दूसरी बात कि कोई कहे कि दिन की दिनचर्या कैसे भी रहे और अमृत वेला शक्तिशाली बन जाए, तो यह संभव नहीं। जिसके बोल चाल स्थिति धारणा सब कुछ अच्छा है, वही अमृत वेला शक्तिशाली बना सकता है। इसलिए शक्तिशाली स्मृति, शक्तिशाली वृत्ति, शक्तिशाली दृष्टि, शक्तिशाली कृति, शक्तिशाली स्थिति, वही हमारे पूरी दिनचर्या को शक्तिशाली बनाता है। तो अमृत वेले को अगर शक्तिशाली बनाना है तो उसकी पूर्व तैयारी बहुत जरूरी है। हम सब करते हैं अमृत वेला, लेकिन अमृत वेले को अगर हम पावरफुल बना लिए तो हमारी दिनचर्या में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं। तो आप सब रेडी हैं? रेडी हैं पावरफुल अमृत वेला करने के लिए? करेंगे? जितने भाई बहने सुन रहे हैं और आज क्लास को हम जिस तरह से सुना रहे हैं, पक्का यहां संकल्प करेंगे, और वो संकल्प अगर आपने पूरा किया तो वो बाप दादा की आश पूरी करने का बहुत बड़ा आधार बन जाएगा, बहुत बड़ा आधार बनेगा। तो सब संकल्प करेंगे, पहली बात कि आज से जो शेष संगम युग का समय है, कितना संगम युग का समय, कितना शेष है, कितना शेष है, 10 साल, 20 साल? अमृत वेला नहीं, संगम युग का समय कितना शेष है बाबूजी, बोलो कितना समय शेष है? 7 साल। अभी हमने शरीर छोड़ा, संगम युग पूरा हो गया। इसलिए संगम युग कितना शेष है वो तो जाने हो जाने, अपना कितना शेष है बताओ, और उसके आधार से हम संगम युग को समझ सकते हैं। इसलिए हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जो करना है अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है। हमें अपने जीवन को साधारण रूप से नहीं बिताना है। जो बाबा के बच्चे जो ईश्वरीय ज्ञान में आके बाबा को पहचान गए हैं, अपने जीवन की वैल्यू को पहचान गए हैं, अपने भविष्य को बनाने का लक्ष्य रखे हैं, जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखे हैं। कल बाबा मुरलीम कहता है कि बच्चे ये ख्याल भी ना आए सब राजा थोड़े बनेंगे, ऊंच पद पाने का लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ करो। तो कम से कम जितने भाई बहने यहां बैठे हैं आज मेरे साथ कुछ संकल्प करेंगे, कुछ प्रेरणा लेंगे और कुछ आवश्यक अपरिहार्य कुछ ऐसे संकल्प करेंगे जो हमारी दिनचर्या बहुत अच्छी बन जाए, जो हमारा जीवन उदाहरण मूर्त बन जाए, जो सब हमको देखें कि अगर जीवन बने तो इनके जैसा जीवन बने। ये संकल्प अगर करते हैं तो हाथ उठाओ, संकल्प ये करते हैं तो हाथ उठाएं, उठाइए हाथ, बड़े धीरे धीरे उठा रहे हैं, हैं? करेंगे नहीं संकल्प, हैं? ठीक है, सब संकल्प लंबा हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए, ठीक है। अब अपने लिए अपना अभिनंदन कीजिए, स्वयं को धारणाओं पर चलाने के लिए पहला संकल्प होना चाहिए दृढ़ता। जब तक उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं, जब तक दृढ़ता का व्रत नहीं लेते हैं, जब तक संकल्प पक्का नहीं करते हैं, तब तक वो साकार नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अपने अंदर संकल्प करें। एक कविता है मैं आपको सुना रहा हूं, वो याद करके जब याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई बात को करने के लिए पहले दृढ़ता का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा मुझ में तेज नहीं पर दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा मुझ में तेज नहीं पर दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन खींचा है, पत्थर पर लिखी इबारत हूं, पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, इस जग में जितना जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, तानों के शोर में रहकर भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, मैं अपने हाथों रचा हुआ तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुम हालातों की भट्टी में, तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना निखरूंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बाबा के महावाक्यों को सुनता हूं तो मन में ऐसे जज्बा आता है कि बाबा कितना बताते हैं। कल की मुरली में तो था, लगभग कितनी बार कहा बच्चे याद करो याद करो, बेबी न बनो बेबी से भी बेबी हो, हैं? आज बाबा कितनी बार यही याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम्हारा बाप से लव है, वर्षा को याद करो, इतना तो करो, सर्विस का सबूत दो, लायक बनो। ये बाबा का प्यार नहीं तो क्या है। बाबा आपको संपूर्ण बनाने के लिए संकल्पबद्ध है, उसको बना के ही छोड़ना है, वो हमारे पीछे पड़ा है, आपके पीछे पड़ा है, वो सजा के तैयार करके आपको लेने के लिए तैयार है। क्या हम पूछें क्या मैं तैयार हूं? कब तक हम सुनी को अनसुनी करेंगे? बाबा बुला रहे हैं, बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। भक्तों की चीत्कारें, दुखियों की चीत्कारें क्या तुम तलक ना आई? क्या भक्तों की पुकारें पड़ती नहीं सुनाई? अब कुछ तरस दुखाओ, उनको दरस दिखाओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर है? वादा हर एक निभाया, मेरे समान बनकर वादा तुम भी निभाओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। और मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक? इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक? जब मैं एक गीत लिख रहा था, आज से बहुत साल पहले, मधुबन में आने से पहले लिखा था, रिकॉर्ड तो बाद में हुआ, तो लोगों ने कहा ये भाई गाना नहीं गाना, ये गाना बनाना नहीं, ये नहीं सुनाना। मैंने कहा क्यों? कहा बाबा सुन लेगा कि अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ, तो उसका आना बंद हो जाएगा। तो हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जब ये गाना बनाया तब लोगों ने हमको बताया कि ये गाना कभी गाना नहीं, अगर बाबा ने सुन लिया गाना, अब बाबा सुनता तो है, तो बाबा गाना छोड़ देगा। मैं पास में तुम्हारे आता रहूंगा कब तक? इंतजार मैं वतन में करता रहूंगा कब तक? आप देर न लगाओ, आओ वतन सजाओ। मैं कहता हूं बाबा सारी दादियों को बुला लिया, सारा सजा लिया वतन में, किसको छोड़ा ही नहीं, अब सबको बुला लिया आपने, एक तो दादी थी उसको भी बुला लिया, आप तो सबको बुलाते जा रहे हैं, और इधर अभी स्थापना काम बाकी है, हम क्या करेंगे आगे चल करके? लोग हमसे अपेक्षा रखेंगे, कहेंगे दादियां कहां है तो हम क्या दिखाएंगे? हैं सुरेंद्र भाई, दादियों को कहां से हम लाएंगे? भाई देख लो, फोटो में देख लो, चित्रों में देख लो, देखना है, यही करेंगे, है ना? तो ये बात कान में गूंजनी चाहिए रोज सवेरे उठते ही कि बाबा बुला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। बच्चे दिन भर बिजी रहते हो, अमृत वेले तो उठो। और हम किसी तरह को उठ भी जाते हैं तो उठ के क्या करते हैं सबको पता है। एक तो जो सबसे बड़ा विघ्न बनता है हमारी याद की यात्रा में, अमृत वेले सबसे पहले वो विघ्न है आलस्य और अलबेलापन का। आज मैं आपको कुछ युक्तियां बता रहा हूं, उस संकल्प के आधार से, उस धारणा के आधार से आप अमृत वेला सशक्त रहेंगे, सजग रहेंगे, सावधान रहेंगे, निद्रा मुक्त रहेंगे, आलस्य मुक्त रहेंगे, और अपनी दिनचर्या को बड़ा अच्छा बना सकेंगे। एक तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए पूर्व तैयारी करनी है कि रात को ही पहले अपने आप को तैयार करें कि मुझे अमृत वेला अपना बहुत ही पावरफुल बनाना है। उसका आधार है कि जल्दी सो जाएं। बाबा तो कल बोल रहे थे 9 बजे सो जाओ, लेकिन 9 बजे तो यहां कहां सो पाते हैं, 9 बजे तो 10 बजे तक तो ऐसे भी होता है, चलो 10:30 तक सो जाओ, उसके बाद बहुत देर हो जाती है। उसके बाद कोई जाग करके अमृत वेला करे पावरफुल, संभावना कम रहती है। मेरी तो दिनचर्या ऐसी होती है कि ढेर सारे काम करने होते हैं, चार्ट वगैरह भी लिखना होता है, रोज 11 बज जाते हैं, 11 बजे से बहुत पहले मैं बहुत कम सोया हूं, लेकिन अमृत वेले को भी पावरफुल बना लेता हूं, इसलिए कि मुझे तो कोई काम है नहीं, मैं तो समझता हूं बाबा ने बुला लिया है, अपने यज्ञ में रख दिया है, अपने ड्यूटी पे बना रख दिया है, सामने कुछ नहीं, हम तो सबके लिए आदर्श हैं, हम मधुबन निवासी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाता हूं अपने दृढ़ता के बल पर, मनोबल के बल पर, बाबा का साथ स्नेह सहयोग है, और सबका प्यार इतना मिलता है, इतनी दुआएं मिलती हैं कि अमृत वेला मुझे एक्सलेंट, मैं अपने अमृत वेले को 90 नंबर तो देता ही देता, 90 नंबर। कोशिश ये रहता है कि 99 या 100% अपनी परफॉर्मेंस हो। आप देखते हैं यहां पर सवेरे अमृत वेले बैठते हैं, एकदम जो पौना घंटा बीतता है उसमें मैं जैसे कि देह और दुनिया से एकदम दूर। प्रारंभ में जब याद में बैठता हूं तो पहले जाता हूं वतन में, जाता वतन में जाकर के बाबा के पास बैठ जाता हूं, बाबा से शक्ति भरता हूं, शिव बाबा के पास चला जाता हूं, बड़ी अच्छी लगन होती है, पहुंच जाता हूं बड़े आराम से। बाबा के पास बैठ करके बाबा से शक्ति लिया, फिर बाबा को निमंत्रण देता हूं कि बाबा कैथल वाले आए हैं, बहादुरगढ़ वाले आए हैं, आप इनको कुछ अनुभव कराओ, साक्षात्कार कराओ, इनको कुछ दो। तो बाबा को लेकर के नीचे आता हूं, फिर मैं सबको दृष्टि देता हूं, बाबा यहां खड़े होते हैं पीछे, दीदी यहां बैठी, मैं यहां बैठा, और बाबा यहां बैठ के जिसे यहां पीछे बैठे हैं, और बाबा यहां आप सबको सकास देते हैं। आपको अनुभव होता हो या ना होता हो, लेकिन देखिए बाबा यहां बैठ कर खड़े होकर के बाबा सबको सकास देते हैं, दृष्टि देते हैं, चाहे वो दृष्टि इन आत्माओं की हो जो आगे बैठी होती है, चाहे वो बाबा अपनी देता है। और एक एक को जब दृष्टि देते हैं तो उसके साथ एक एक वरदान देते हैं, अमर भव, विजयी भव, हिम्मतवान भव, आगे बढ़ो, ऐसे करके संतुष्ट भव, निर्भय भव, अचल अडोल भव, ऐसे करके वरदान भी देते हैं। और उनको इतनी पावर शुभेच्छा देता हूं कि जैसे अगर कोई ऐसे करके हो अगर दृष्टि ले तो जाग जाए, इतनी शक्तिशाली दृष्टि। कईयों को तो अनुभव भी होता है, कई तो अपने अनुभव सुनाते हैं कि उस समय पर हमें क्या दिखाई पड़ा, क्या अनुभव हुआ। और आज तो मैंने देखा सवेरे आप सब इतनी अच्छी गहरी उसमें बैठते हैं, इतनी अच्छी ढंग से बैठे थे कि एक्सलेंट, जैसे कि एकदम किसी को भी मैंने सोते नहीं देखा, किसी को नींद में नहीं देखा है। हाँ, और इतनी शक्तिशाली याद में बैठे थे कि मैं तो इतना खुश हो गया कि मैं भी गुम हो गया, बहुत अच्छा आनंद आता है। ऐसी दिनचर्या हो, ऐसा अमृत वेला हो, तब शक्तिशाली बने। सवेरे सवेरे आप जब याद में बैठते हैं तो अमृत वेले तो समझो महायज्ञ रचते हैं, वो महामृत्युंजय का जाप करते हैं, आप जन्मे जय का यज्ञ रचते हैं। और जब अमृत वेला आप बैठते हैं तो उस यज्ञ को शक्तिशाली बनाने के लिए, अमर बनने के लिए, अमर भव का वरदान पाने के लिए अमरनाथ बाप से अमर कथा सुनते हैं, या समझिए उस समय पर अमर भव का वरदान लेते हैं। और उसी समय पर माया अनुभव करती है कि अगर इनका यज्ञ सफल हो गया, अगर ये यज्ञ सफल हो गया, थोड़ा भी झुटका घुटका नहीं आया, तो दिन भर में मेरी कितना भी कोशिश रहे लेकिन दाल गलेगी नहीं। इसलिए अमृत वेले खास करके माया, आलस और अलबेलेपन के रूप में आके आपके यज्ञ में विघ्न डालने के लिए अमृत वेला आती। और उसी समय अगर आपने पक्का कर लिया तो दिन भर में माया की दाल गलने वाली नहीं है, माया आपके ऊपर विजयी नहीं हो सकती है। इसलिए अमृत वेला, अमर भाव का वरदान लेना है तो आज से संकल्प करें कि अमृत वेला का अर्थ है, बाबा कहते हैं 2-3 बजे उठ जाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 2-3 बजे उठ जाओ, 4 बजे तक सो जाओ। 5 बजे तक का अमृत वेले का समय हमारा पक्का है, 2 बजे या 3 बजे उठ पाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम 3 बजे उठ जाएं, 3:30 बजे उठ जाएं, थोड़ा फ्रेश हो जाएं, थोड़ा अपने को फ्रेश कर लेंगे बहुत अच्छा है। लेकिन 4 से 4:45 बजे तक का जो समय है ये ऑफिशियल यज्ञ की तरफ से मुकर्रर है कि और ज्यादा न जाग सको, लेकिन 1.25 घंटा बैठो और 1.25 घंटे में इतना आनंद ले लो जो सारे दिन के लिए ताकत बन जाए, शक्तिशाली बन जाए। और यही कारण है कि 45 वर्ष हो गए मधुबन में, आज तक एक दिन भी अमृत वेला कभी मिस नहीं किया है, इसलिए आपके सामने बैठा हूं। हाँ? वेरी गुड वेरी गुड, बधाई भाई, बधाइयां बधाइयां बधाइयां, बहुत अच्छा। और भी देखा हो कोई है जो ऐसे हैं जिन्होंने संगम युग में अमृत वेला मिस नहीं किया है, ऐसा है कोई? अरे वाह, हैं? वाह दीदी वाह, क्या बात, इतने लोग हैं, इनका तो अभिनंदन करने का मन करता है जो अमृत वेला मिस न करे। मुझे तो 45 साल हो गए इसके लिए बाबा ने दादियों ने इनाम दिया। दादी जान के एक बार हिस्ट्री हॉल में थे वहां पर, तो वहां कहा कि जो कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करते हैं दादी उनको इनाम देगी। और तब बहुत समय पहले की बात है, तब लगन लगाए थे बहुत, तो तीन लोगों ने हाथ उठाया था। कौन थे तीन बता दूं? एक तो विश्वरतन दादा थे, दादा ने हाथ उठाया, दादा को हमेशा देखते थे। कल भी बता रहा था, दीदी और दादा को मैंने देखा अमृत वेले हिस्ट्री हॉल में योग करते ऐसे करके बैठते, दादा ऐसे बैठते थे, एकदम ऐसे करके बैठते थे, नीचे दृष्टि दे ही नहीं देते ही नहीं। और मैं सामने बैठकर दादा को देखता था, दादा जरा दृष्टि तो दे दो, दादा दृष्टि देते ही नहीं थे। फिर मैंने बाद में दादा से कहा, दादा आप तो दृष्टि देते नहीं, ऊपर ही देखते रहते हैं, ऊपर क्यों नहीं देखते? कहते क्या देखूं, सब सोए रहते हैं, क्या दृष्टि दूं। मेरे तो कान में उनकी आवाज आज तक भी गूंजती रहती है। जी 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 जी, तो दादा थे और एक भाई और थे और हैं, अपने रामलोचन भाई हैं, नीचे शांति वन में रहते हैं। उनसे बड़ी प्रेरणा मिली तो वो अमृत वेले कभी मिस नहीं। तीसरा मेरा नंबर था, तो हम तीनों ने दादी से इनाम लिया। कहने का भाव ये है कि केवल उठ जाना ही इनाम लेने का पात्र बनना नहीं, उठना तो पहली सीढ़ी है, उठेंगे तो बाबा की मदद जरूर मिलेगी। रोजाना रेगुलर आपने पक्का कर लिया कि मुझे 4 बजे किसी भी हालत में उठना ही उठना है, चाहे रात को आप कितने बजे सोएं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, बीमार हैं, कहीं पर भी, लेकिन अगर पक्का बना लिया तो आपको 4 से 4:45 तक फिर आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने पक्का कर लिया। इस शरीर में नेचुरल ही एक अलार्म लगा है, वो अलार्म है कि अगर आपको 6 घंटे आप सोते हैं और 6 घंटे आपको पूरा सोने को नींद नहीं मिली तो आपको कहीं ना कहीं दिनचर्या में आपको डिस्टरबेंस होता ही रहेगा। आपने पक्का कर लिया मुझे 6 घंटा है। एक भाई बंबई में था, मुझे लेकर क्लास में जा रहा था, मैंने पूछा आप रेस्ट करते नहीं? कहा मैं भैया दिन में रेस्ट नहीं करता। तो मैंने कहा अच्छा कितना सोते हैं अमृत वेले बना रात को? कहा 3 घंटा मैं सोता हूं, टोटल 24 घंटे में 3 घंटा। तो बोलता है हाँ, देखा 3 घंटा, मुझे तो 6 घंटा चाहिए। मुझे बात, मैं शर्मिंदा हुआ उसके आगे कि 3 घंटा कैसे होता है। बोलता भाई जी मेरी बचपन से आदत हो गई है कि 3 घंटा से अगर मैं ज्यादा सोऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, और 3 घंटा से कम भी होगा तो भी मैं बीमार हो जाऊंगा, तो मुझे 3 घंटा मेरी नींद चाहिए, 3 घंटा मैं सोता हूं। मैं अवाक रह गया। एक निद्रा, दूसरा भोजन, दोनों को जितना आप चाहे बढ़ाएं और जितना चाहे घटाएं, जो आप पक्का बनाएंगे आपका शरीर वैसा ही काम करेगा। ये शरीर नेचुरलिटी और कॉन्स्टेंटली मांगता है, कंटिन्यूटी मांगता है। आप निरंतर करते रहोगे वो आपके लिए तैयार हो जाएगा। आप 2 रोटी की भूख रखते हैं, आप 2 रोटी से ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। आप नींद की भी इतना चाहिए, जितना चाहिए उतना करेंगे तो आपको नींद और ज्यादा जरूरत नहीं। इसलिए अपने आप को फिक्स कर लो कि मुझे कितना चाहिए उतना रेस्ट देना जरूरी है। नींद का कम करना वो भी इस शरीर को टॉर्चर करना है। कम नींद करेंगे तो क्या होगा, सारा दिन चिड़चिड़ापन रहेगा, डिस्टर्बेंस होती रहेगी, आप हमेशा एक दूसरे पर बिगड़ते रहेंगे, चलते फिरते जैसे अर्थक्वेक आता रहेगा, आपको भूचाल आता रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि नींद को प्रॉपर देना है। अब अमृत वेला भी पक्का करना है, 6 घंटे आपको नींद भी देनी है, तो क्या करना है, रात का भोजन आपका या तो जल्दी कर लीजिए और वो भी सुपाच्य लीजिए, हल्का भोजन लीजिए, या तो सबसे अच्छा है कि रात का भोजन न कीजिए। क्या ये कर सकता है कोई? आप में से कर सकते हैं सब? अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने की उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत जरूरी है। रात को अच्छी तरह से, देर से आप 10 बजे खाएं, 9 बजे खाएं, 11 बजे खाएं और सवेरे अमृत वेला बहुत अच्छा कर सकें तो बिल्कुल कोई कल्पना न करे अमृत वेले पावरफुल बनाने की। तो रात को भोजन आपका सूक्ष्म से सूक्ष्म हो। फल ले लें, फल में जो फल लेने योग्य है रात को, पपीता वगैरह होता है, ये सब चीज ले लें। और दिनचर्या में भी जिनको अपने शरीर की संभाल नहीं है, जो हमेशा बीमार रहते हैं, जिनको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, जिनको न काम पे, न क्रोध पे, न लोभ पे, न मोह पे, न अहंकार पे, जिनकी दिनचर्या डिस्टर्ब रहती है, जो इन इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, वो अमृत वेले शक्तिशाली योग कर ले, उनसे भी कल्पना नहीं कर सकते। वो भी न सोचें, वो मन में ये बात भूल जाए कि अमृत वेला मेरा पावरफुल होगा। इसलिए भोजन जितना भी सात्विक रहेगा, सात्विक मतलब जितना भी तला पकाया हुआ गरिष्ठ भोजन, भारी भोजन, भोजन का ज्यादा खाना, जिनको अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं रहेगा, वो योग का आनंद नहीं ले सकते। अच्छा तो ये हो कि कम से कम भोजन ले, सुपाच्य भोजन ले और रात को शाम को 7 बजे तक पहले, यहां तो 7:30 बजे भोजन मिलता है, चलो ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक भोजन हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर अमृत वेला पावरफुल करना है तो उसकी पूर्व तैयारी कर ले, ठीक है? पूर्व तैयारी कर लेंगे ये तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए रात्रि भोजन प्रथमता। दूसरी बात, रात को सोने से पहले बाबा की दूसरी श्रीमत है कि कम से कम आधा घंटा याद में बैठ के सोएं। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कोई रात को सोने जाते हैं तो आधे घंटे भी कोई बैठते, थके मांदे होते हैं, नींद आती है। केवल बाबा को 5 मिनट भी याद करें तो भी बहुत अच्छा है। कौन है जो रात को सो करके, सोने से पहले जो बाबा को याद अच्छी तरह करके सोते हैं? कम से कम 5 मिनट सोते हैं, 5 मिनट याद करके फिर सोते हैं। लंबा हाथ उठाएं, लंबा हाथ उठाएं, बहुत अच्छा, अभिनंदन, बहुत अच्छा, बधाइयां। इतना तो होना चाहिए, नहीं तो जितना हो सके 15 मिनट है, आधा घंटा बाबा कहते हैं तो जरूर करके सोएं, क्योंकि रात का सोना, बाबा को याद करके सोना, ये हमारे सवेरे अमृत वेला को बड़ा शक्तिशाली बनाता है। तीसरी बात कि रात को सोने से पहले और सवेरे उठते ही अगर आपको अमृत वेला शक्तिशाली बनाना है तो बाबा की मुरली के कुछ महावाक्य वो जरूर पढ़ लें, जरूर याद करके सोएं। निर्भय भाई जी कहते रहे कि मैं तो अमृत वेले उठता हूं और बाबा की मुरली की हेडलाइन, उस पर नजर पड़ती है, थोड़ा देख लेता हूं और फिर मैं योग में बैठता हूं तो मेरा जो है नींद नहीं आती। तो ऐसे ही मैं भी क्या करता हूं, अमृत वेले यहां पर बैठता हूं, उसके पहले, अब जो संडे आने वाला है, आज शुक्रवार है, जो संडे आएगा, संडे की मुरली का साप्ताहिक बनाता हूं, उसकी कविता भी बनाता हूं, उसकी हेडलाइन 7 दिन का जो समान होता है वो याद कर लेता हूं और यहां बैठता हूं। अगर वो याद नहीं कर पाता हूं, नहीं होता तैयार, तो रोज के मुरली, आज सवेरे के मुरली को अमृत बेला शुरू में पढ़ करके, वो पढ़ करके यहां बैठ गया और उसी के ऊपर मंथन चिंतन, उसी के ऊपर गीत बनाना, उसी के ऊपर कविता बनाना, उसी के ऊपर क्लास कराना, उसी के ऊपर चिंतन करना, वो होता है जो हमारे याद को बड़ा शक्तिशाली बनाता है। लेकिन अगर अमृत वेले आप बैठ गए, ऐसे ही बैठ गए, जबरदस्ती बैठ गए, हट करके बैठ गए, तो आपका उसमें कोई आनंद नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अमृत वेले हट करके न बैठो, हठ योगी बन करके न बैठो, बल्कि इस समय के महत्व को समझो। जिसने अमृत वेले के महत्व को समझ लिया उसका अमृत वेले पावरफुल हो सकता है। अमृत वेले का महत्व है, पहला, यदि संगम युग में जिंदा रहना है, अमर बनना है, तो अमृत वेले के महत्व को समझना है। यही समय है जब अमरनाथ बाप अमर भव का वरदान देते हैं। यही समय है जब बाप भक्तों को पीछे लेकिन बच्चों के लिए पहला अपॉइंटमेंट बच्चों को देते हैं। बाबा जब बच्चों के लिए फ्री होते हैं, बच्चों को वरदान देने के लिए, बच्चों की मदद करने के लिए, बच्चों के दिल की सुनने के लिए, बच्चों को सहयोग देने के लिए, बच्चों के संकल्प पूरा करने के लिए, मनोरथ पूरा करने के लिए बाबा कटिबद्ध है। बाबा उस समय तैयार रेडी रहता है और बाबा इस समय हम बच्चों के लिए ही होता है और किसी और के लिए नहीं। और वो इंतजार करता है रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले। पहली नजर में देकर दृष्टि प्यार से भर लेते हो, पकड़ के उंगली साथ में बाबा अपने ले लेते हो। संगम युग में संग आपके लगे मिलन के मेले, बाबा मिलते अमृत वेले। जी करता है उड़कर आऊं और यहीं रह जाऊं, प्यार में ऐसे खो जाऊं खुद को भी ना पाऊं। संगम युग में संग तुम्हारे लगे मिलन के मेले, बाबा अमृत वेले। रोज सवेरे हमको मिलते बाबा अमृत वेले। ऐसा लगता इंतजार में बैठे आप अकेले बाबा अमृत वेले, बाबा अमृत वेले। हाँ, अभिनंदन की। बाबा रोज सवेरे अमृत वेले बैठते ही हम बच्चों को वरदान देने के लिए, तो अमर भव का वरदान ले लीजिए। सवेरे उठते ही हमारा ये संकल्प होना चाहिए। और जब अमृत वेले बैठे, अब आपकी और तैयारी, चौथी तैयारी क्या होनी चाहिए? चौथी तैयारी ऐसे आपकी बैठक होनी चाहिए जैसे मैं बैठा हूं। कब से बैठा हूं देखिए, ये बाबा का जो आसन है ये निद्रा मुक्त आसन है। ये इसमें बैठेंगे आपको नींद नहीं आएगी। जो बैठ सके ऐसे बैठे, जिन्होंने ऑपरेशन कराया वगैरह हो, पांव वाव ऐसा हो, उनको जबरदस्ती नहीं बैठना है, लेकिन ये बैठना बहुत अच्छा है। आप बैठे ये अमृत वेले, पांव पे पांव रखने का। हाँ देखिए, ये कितने लोग बैठे हैं, जो बैठ सके बहुत अच्छा है, और ना बैठ सके तो कम से कम दर्द होगा, कम से कम जागे तो रहेंगे, ये तो अच्छा पक्का है। थोड़ा जागे तो रहेंगे ना। जगाने के बड़े उपाय हैं, कभी ऐसे बैठे कभी उस पांव पे ऐसे बैठे, लेकिन बैठक हमारी ऐसे होनी चाहिए। मैं उनको थोड़ा सा तरस भी आती है, उनको सहयोग भी देना चाहता हूं। जो ऐसा नहीं बैठ सकते हैं तो ऐसा बैठने का प्रयास करें। बाबा जब हमारा 92 इयर्स का ऐसे बैठ सकता है तो कोई ये नहीं कह सकता भैया मेरे तो बैठा नहीं जाता है। ये आज हमने शरीर जो बनाया है, ये हम अपनी गंदी आदतों के कारण ही हम अपने ऐसा बनाए। ज्यादा खा लिए हैं, पेट बाहर निकला, अभी ऐसे बैठ सकते नहीं है, उसमें किसका दोष है? शरीर को हमने अपने आप बनाया। मैं कहता हूं कि यदि राजयोगी बनना है तो राजयोगी बनने की हमारी 5 बातें नोट कर लें। एक, पहला है स्नेही मूर्त बन जाए। जो स्नेही मूर्त हैं, जो सबको स्नेह देते हैं, जो सबको प्यार करते हैं, प्रकृति को प्यार करते हैं, ईश्वर को भी प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं और बाबा को भी प्यार करते हैं, ईश्वरी परिवार को प्यार करते हैं, स्नेही मूर्त बनते हैं, वही योगी कहलाने लायक बनते हैं। तो पहला है स्नेही मूर्त बन जाए। दूसरा है स्वास्थ्य की संभाल करें। स्वास्थ्य अगर हमारा स्वस्थ है शरीर, तो ही हम योगी बन सकते हैं। बीमार खूब हैं, सांस भी नहीं लिया जा रहा है, सांस भी लेना देना ना, हम प्राणायाम कर पाते हैं, ना व्यायाम कर पाते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं, ना वॉकिंग करते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, और अमृत वेले बैठे हैं बाबा को याद करने के। बाबा कहते हैं वाह, बाबा तक पहुंचते ही नहीं, वो यही सो जाते हैं। और देखिए, जो कोचों पे बैठते हैं, कुर्सियों पे बैठते हैं, उनसे उम्मीद कीजिए कि बड़ा शक्तिशाली अमृत वेला कर पाए, तो बिल्कुल नहीं। ये कुर्सी बनाई गई है, मैंने कहा था, हमने कहा था कि कभी भी वो कुर्सी नहीं होनी चाहिए जिसपे हम बैठ जाए कोच वाला, बल्कि ऐसे बैठे, अलर्ट बैठे, सीधा बैठे, सामने बैठे, फिर से बैठे, आप सब ऐसे बैठ जाए, अलर्ट बैठे, ऐसे बैठे, सामने देखें, सामने देखें, बाबा को देखें, और जहां भी आप रहते हैं वहां पर बाबा को सामने चित लगाएं, ज्योतिर्बिंदु बाबा को, और एकदम आंख से आंख मिलाएं, बाबा जैसे देख रहे हूं, मैं बिंदु यहां चमक रहा हूं और इतना प्रकाश मैं हूं, और जैसे मेरा शरीर नहीं है और सामने बाबा है, ज्योतिर्बिंदु की ज्योति। जो गीत बज रहा था, ये गीत तभी बना है कि जब नए दिन की नई शुरुआत हो, एक बाबा बस तेरा ही साथ हो, सामने देखे तुझे पहली नजर, और दिल ही दिल में बाबा तुझसे बात हो, जब नए दिन की नई शुरुआत। ऐसे करके, और फिर प्रभु तुमको निहारने को दिल चाहता है, दिल में उतारने को दिल चाहता है, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को कितना कर, तुमको निहारा करूं, निरंतर निहारा करूं। ये सब जितने भी गीत है उन अनुभूतियों में बने हैं जबकि हम बाबा की याद में बैठते हैं। तो सवेरे उठें, ऐसे बैठें, सामने देखें, झुकें जरा भी नहीं, अपलक देखें, लगातार देखें, 3-4-5 मिनट तक। बाबा को देखें और चेहरे पर थोड़ा मुस्कान भी लाएं, नहीं तो कोई देखेगा तो डर जाएगा। चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, सहज मिलन की मुस्कान है, हठ योग की नहीं। देखें कि बाबा, उसमें गीत में है, पलकों न बंद होना, पल भर न जाने देंगे, मिले कल्प बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे। ये संकल्प करें, ये पहली मिलन है, अमृत वेले के मिलन। अब ना मिले तो सारे कल्प कल्प की बाजी खत्म। थोड़ी देर के बाद मैं रहूं ना रहूं, बाबा मुझे एक नया जीवन दिए, आज का दिन दिए उपहार। उठते ही सबसे पहले बाबा को देखें, बाबा को नमस्ते करें, बाबा नमस्ते, बाबा नमस्ते, ओम शांति बाबा, नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा। ये सब झूठा लगता है, सब झूठा लगता है। बाबा आपसे मेरा प्यार है, आपका मुझसे प्यार है, और दूसरा कोई नहीं। मैं आपका, आप मेरे, मैं बाबा आपका, बाबा आप मेरे। ये निर्निमेश दृष्टि शुरू में देखें। जिनको नींद आए उनको खास खोल करके अपनी आंखों खोले और बाबा को देखें। आपका ये जागरण का जो मूड, ये थोड़ा प्रयास रहेगा, आपको जगा के रखेगा। जब भी नींद आए खुली आंखों से देखें लगातार अपलक दृष्टि से, तो आपकी नींद उड़ जाएगी। ये करके देखिएगा। लेकिन सीधा बैठे, थोड़ा भी पलक झपका है तो गए। इसलिए इसको निर्निमेश दृष्टि। बाबा ने कहा है, आज अमृत वेला की किताब बनी है, उस किताब में भी बाबा ने कहा, बच्चे अपने महावाक्यों कब का है मालूम नहीं है, इन बाबा ने कहा आंखें बंद नहीं होना चाहिए, आंखें बंद नहीं होना चाहिए। सवेरे बैठो तो थोड़ी भी आंखें बंद हुई तो सो जाएं। ठीक है, ये करके देखिएगा। बट्ठी का आज का दिन पूरा हो रहा है, लेकिन यहां से संकल्प करके जाइए और मेरे साथ संकल्प कीजिए कि 1.5 घंटा हम याद में बैठेंगे, लेकिन निद्रा मुक्त बैठेंगे, नींद नहीं करेंगे। और जब तक पक्का ना हो जाए कि मुझे बैठना है याद में, इसमें नींद नहीं करेंगे, पाठ पक्का ना हो जाए, तब तक आपको कुछ भी करना पड़े, घर में है दरवाजा बंद करके खूब सफेद लाइट जला करके खूब डांस करो, खूब डांस करो। हाँ बाबूजी, आप डांस बहुत अच्छा करते हैं ना, खूब डांस करो खुशी में, लेकिन नींद नहीं करो। आज से संकल्प करें, जितने भाई बहने मुझे देख रहे हैं, कि मुझे याद में बैठ करके निद्रा योग नहीं करना है, नींद में योग नहीं करना है, या योग में नींद नहीं करना है, योग में नींद नहीं करना है। हाँ सो रहे हैं, याद करके हम सोए हैं, बाबा को याद करने सोने जाएं, वो पक्का होना चाहिए। और भाई बहनों की अक्सर करके हम सबकी ये आदत है कि अमृत वेले जब याद करने बैठते हैं, योग करने बैठते हैं, तो खूब नींद आती है, और जब नींद करने जाते हैं तो नींद नहीं आती है। मुरली सुनने बैठते हैं तो खूब नींद आती है, मुरली के बाद सोना चाहते हैं फिर नींद नहीं आती है। ये बड़ी गजब की विडंबना है, ये रैल रूप से अलबेलापन आ गया। मैं आपको बताऊं, ये ईश्वरीय परिवार में एक प्रकार से जंक लगाए, जंक लगाए। त्याग किसको कहते हैं, तपस्या किसको कहते हैं, निद्राजीत बनना कैसे कहते हैं, दृष्टि लेना देना कैसे होता है, दृष्टि देकर के भोजन को ग्रहण करें, बाबा को याद करके भोजन ग्रहण करें, लगभग ढेर सारी चीजें, एक दूसरे को हम याद दिलाएं, शिव बाबा याद है, स्वर का वर्षा याद है, ये सब बातें भूल गई। पहले ये सब बहुत होता था, यहां लिखा होता था जगह जगह पर, स्वर का वर्षा याद है, पत्तों पर पीपल के पत्ते बनाते थे लकड़ी के और उसके ऊपर लिखा होता था। अब तो किसी को कह भी नहीं सकते, बाबा को याद है, कहेगा तुमको याद है क्या, हमको याद दिलाने आयो। और आजकल किसी कोई बगर सोया हुआ है ना, तो उसको जगाने की भी हिम्मत नहीं होती, कहीं इसको जगाया जाए कहीं वो बिगड़ न जाए, मार न बैठे। एक भाई को तो मैंने देखा, उसने थप्पड़ ही मार दिया, उसको जगाया किसी ने, जगा दिया थोड़ा सा कि भाई बाबा को याद करो, थोड़े ये तो हालत और खराब जाती है, ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। और यहां पर और बड़ी विचित्र बात, बाबा के कमरे में देखो तो वहां बहन बैठी है, मैं देखा अभी कल परसों, वो बहन बैठी है और सो गई। मैंने उसको कान में बोला ओम शांति, कान में जाके बोला कि भाई वो बुजुर्ग भाई खड़े हैं कि कुर्सी खाली हो तो मैं बैठूं, और सो गई। उसको सुनाई नहीं पड़ा क्योंकि उसने कान में वो डाल के रखा था जो, और मोबाइल सुन रही और सो रही है बड़े आराम से। अब ऐसी स्थिति में किसको कौन जगाए, कौन कहे, ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज से अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए, निद्रा मुक्त बनाने का, ये मनोवैज्ञानिक है। मैं आपको एक विश्लेषण देता हूं, आपस में एक दूसरे को प्रेम होता है, लौकिक दुनिया में प्यार होता है, तुम अगर मिल जाओ तो दुनिया छोड़ देंगे हम, उनके लिए रातों रात जागते हैं, आकाश के तारे गिनती करते हैं, उनकी नींद कहां जाती। एक मां का नौजवान बेटा अगर एक्सीडेंट में मर जाता है तो मां का हफ्तों हफ्तों की नींद कहां जाती, नींद आती है, मां को नींद आती है, बोलो माताओं बोलो, कहां जाती है नींद, क्यों नहीं आती, क्योंकि उससे प्यार है, उसकी नींद उड़ गई महीनों महीनों की। आप देखो न चैन है न आराम है, सब कुछ भूल जाता है। अच्छा, बाबा कहते हैं लोभ होता है, स्टीमर आ रहा है, माल सप्लाई हो रहा है तो रात भर जागे हैं क्योंकि माल मिल रहा है, और हमको रतन मिलते हैं तो हमको नींद क्यों आती है। बाहर दुश्मन होते हैं तो रात को भी लगता है दुश्मन आ ना जाए, तो बंदूक पे हवाई पर हाथ रख करके बैठते हैं, रात को सोते हैं और रात को भी जागे होते हैं कहीं दुश्मन ना आ जाए, और माया तो चारों तरफ दुश्मन यहां पर हमको घेरे है, फिर हमको नींद क्यों आती। ये सारा मनोवैज्ञानिक कारण है। जिसको लगन लगी, अब मैं सोचता हूं बाबा 92 वर्ष के थे, बाबा को कभी भी उबासी भी किसी के मंजूर नहीं होती थी, बाबा को किसी ने उबासी लेते हुए नहीं देखा, बाबा को किसी ने कभी सोते हुए नहीं देखा। जगदीश भाई कहते हैं एक बार मैं गया बाबा के कमरे में, बाबा लेटे थे, पांव पे पांव रखे थे और लेटे थे, और मैं दरवाजे से घूमा और देखा, सोचा कि जो बड़े लोग होते हैं उनके पांव में फूल बना हुआ होता है, पद्म बना होता है, मैं जरा देख तो लू बाबा के पांव में पद्म बना हुआ, ऐसे जैसे मैंने किया का बच्चे देख लिया। बाबा कहते बच्चे देख लिया, बहुत चौंक गए कि बाबा को पल पल का पूरा खबर होता है। इसको सजगता कहते हैं। संगम युग खत्म हो रहा है, अब नैपुराइन दुनिया गई की गई, जिनको लगन है, जिनको पता है कि मुझे मेरा एक एक पल बड़ा कीमती है, यह अमृत वेला बड़ा शक्तिशाली बनाना है, इसी समय मैं अशरीरी बनकर के बैठूं ताकि बाबा विश्व सेवा कराए, बाबा मुझे लेकर के जाए, बाबा कैसे साक्षात्कार कराएंगे। लेकिन जो अव्यक्त बनकर बैठते हैं, अशरीरी बनकर बैठते हैं, बाबा की याद में मगन होकर बैठते हैं, बाबा उनके द्वारा साक्षात्कार कराते हैं, उनके द्वारा बाहर की सेवाएं कराते हैं। बाबा देखते हैं उसी समय पर कि बाबा के साथ बैठ के हम भी वतन में बैठ गए हैं, सबको नीचे भेज दिया है, हम वतन में हैं और साक्षात्कार करा रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, आप सब बैठे हैं ऐसे। कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको, अमृत वेले बैठे ये जरूर करें, दिन की दिनचर्या में कल भी रहेगी थोड़ी सी बात, वो आप जरूर करें, मेरी 7 बात नोट कर लें। एक पहली बात तो है, उठते ही पहली दृष्टि बाबा पर पड़े, किसी भी व्यक्ति को नहीं देखना है, घड़ी को भी नहीं देखना है, पहले शुरू के हमारे 10 मिनट के संकल्प बड़े पावरफुल होने चाहिए, वो हमारी दिनचर्या के आधार बनते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में गया वैसे आपकी दिनचर्या बन जाएगी। उठते ही बाबा पर नजर पड़े, दृष्टि बाबा को ले, बाबा को देखें और बाबा से नमस्ते कर लें। हो सकता है 2 बजे हो और भी बीच में हो तो भी बाबा को देख लें, बाबा को देखें और बाबा से नमस्ते कर लें। फिर देखें घड़ी में कितने बजे हैं। अगर आपको रात को आधी रात है, आपको सोना है, फिर सो सकते हैं, लेकिन पहली नजर बाबा के ऊपर। दूसरी दृष्टि ये होना चाहिए कि मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं, मैं वतन से उतर रहा हूं और मेरा धरती पर अवतार हुआ है, आज के दिन मैं आया हूं। रोज अपनी दिनचर्या का आरंभ आपको अवतरित हुई आत्मा होकर के करना है। मैं वतन से फरिश्ता आया हूं, बाबा ने मुझे धरती पर भेजा है, और ऐसे वरदानी मुद्रा में हो जाएं, ऐसे करें, हाथ करें ऐसे, सबके आगे न करें नहीं तो लोग घबरा जाएंगे, सबके आगे माना परिवार में सबके आगे न करें लेकिन ऐसे करके अगर 3 मिनट तक के लिए उठते ही चारपाई से उतरते ही इस स्थिति में स्थित हो जाएं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। बोलिए फुल आवाज में, मैं शिव शक्ति अवतार, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शांति की देवी हूं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, मेरा अवतार हुआ है। ये जो है अगर आपने 5 बार एक संकल्प ले लिया, 5 बार दोहरा दें इसी को जो आपने कहा, और दिन भर में अगर 5 बार दोहरा देंगे तो आपके दिनचर्या में 25 बार ये सुमान आपके पास जादुई काम करेगा, मिराकल काम करेगा। आप निश्चय कर लीजिए, आज दिन भर में ठान ले कि मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं। जब कोई सुनने वाला ना हो ना, अकेले बैठे तो नाराजी से लगाते हैं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, मैं शिव शक्ति अवतार हूं, ऐसे करेंगे तो भी आपको बहुत शक्ति मिल जाएगी। तो स्वमान से अपने आप को शक्तिशाली बना लें। तीसरी बात नोट कर लें, अमृत वेला कभी मिस नहीं करेंगे, पावरफुल बनाएंगे। चौथी बात, मुरली को ही ओढ़ना बिछोना, मुरली सब है, जब खाना खा रहे हैं तभी मुरली सामने हो, तभी मुरली को पढ़ें, पढ़ेंगे रिपीट करेंगे दोहराएंगे तो ज्यादा रहेगी। इसीलिए टीवी देखते हैं, बहुत सारे लोगों को टीवी देखने की आदत है, रात को भी देरी तक देखते हैं, ये बहुत बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आजकल ऐसा ये फोबिया हो गया है कि रात रात की नींद हमारी खत्म हो जाती है। कोई भी ब्राह्मण वो ब्राह्मण योग्य नहीं है जो रात को 1 बजे सोए और सवेरे फिर सो जाए और फिर दिन की दिनचर्या बड़ी देर सी हो, अमृत विले फिर मुरली भी ना हो, ऐसी दिनचर्या नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, फिर चौथी बात मुरली, पांचवी बात है कर्मयोग। कर्मयोग चलते फिरते बाबा को याद करने का लक्ष्य बनाए। आपको मैंने कल बताया, आप सवेरे अमृत वेले जब बैठते हैं तो 4 तपस्या रोज करनी, आत्मभिमानी बनने की तपस्या, निरंतर याद की तपस्या, संस्कार परिवर्तन की तपस्या, और चौथा है संपूर्ण पावन बनने की तपस्या। ये तपस्या रेगुलर चलनी चाहिए। स्वराज अधिकारी बनने का बहुत होना चाहिए कि यहां पर बैठ के आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, आत्मदर्शन करें, आत्मन्वेषण करें, आत्मविश्लेषण करें, आत्मसंशोधन करें, आत्मपरिमार्जन करें। ये प्रयोगशाला में बैठ के बहुत करने की जरूरत है। और पक्का बनाए कि आज मैं एक दिन कभी कभी छुट्टी मिले, मौका मिले तो छुट्टी लेकर घर में बैठ के भोजन वोजन भी छोड़ करके एक दिन संकल्प करें कि मैं आत्मिमानी बनने की तपस्या करूं। आप देखिए, एक करें, दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, बहुत मजा आ जाएगा। मैंने तो एक बार ओम शांति भवन नया नया बना था, 3 दिन तक जो किया आज तक भुलाए नहीं भूलता है। केवल एक तपस्या, आत्मिमानी बनने की तपस्या करें, बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पांचवी बात है एकांत में बैठना, चिंतन करना, मथन करना और ऐसा हाथ करें जरा, ऐसा हाथ करें, हाथ करें, फील करें कि बाबा मेरे सिर पर यहां पर है, बाबा की लाइट आ रही है और मुझ आत्मा पर, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें मैं आत्मा। ये अभ्यास आपका जितनी बार हो सके दिन भर में, खाते पीते चलते फिरते सोते जगते, गाड़ी में बैठे हैं मोटर तो भी बाबा मेरे सिर पर है, बाबा मेरे सिर पर, बाबा मेरे सिर पर, बाबा के मेरे सिर पर बाबा की छत्र छाया है, बाबा छत्र छाया। ये अभ्यास करेंगे तो एक अभ्यास आपको अंत मते सगते बना देंगे, एक अभ्यास पकड़े, ठीक है ना। और ज्यादा नहीं, याद में बैठते हैं कौन से बाबा की याद करूं क्या करूं, इसी में सब भूल जाता है। कभी पगड़ी वाला बाबा देखा, कभी दादी के तन वाला बाबा देखा, कभी शिव बाबा को याद करूं, कितना मन कंफ्यूज होता है कि याद नहीं था मैं क्या करूं। तो ये एक अभ्यास से करें आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। भोजन करते समय चार लाइन मेरी याद कर लें, टाइम तो बहुत कम है लेकिन ये याद कर लें, मेरे साथ करेंगे। आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ। आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, साथ हमारे खाओ, हमको भी खिलाओ। आओ बाबा आओ, बस चार लाइन है। आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, हमको भी खिलाओ, और हम खुद भी खाओ और हमको भी खिलाओ। जब ऐसे खिलाओ ना तो ऐसे हाथ करो थोड़ी देर के लिए, चाहे कोई दूसरा कोई खा के चला जाए लेकिन जब तक बाबा खाएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे करके अभ्यास करेंगे, देखेंगे आप इतनी लगन लगेगी, इतना अच्छा हो जाएगा आपको। बहुत खाने के टाइम पर यह कर लें, और दिन की दिनचर्या में अपना हाथ सिर पर रखें, सिर पर रखें, ऐसा फील करें कि बीच बीच में कि बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा के खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया। ऐसे करके फिर नीचे करें, बीच में जब भी मौका मिले तो अपने सिर पर ही दाहिना हाथ रख के फील करें कि बाबा का वरदानी हाथ। ये आपको बाबा की याद में मगन कर देगा, एक अभ्यास कर ले। और एक कर्मियों का और भी मैं करता हूं, यहां पर डाइनिंग हॉल में जहां आप भोजन करते हैं, मैं रोज सवेरे आप नाश्ते से पहले योग के बाद वहीं पर चक्कर लगाता हूं, आज भी चक्कर लगाया, वहां चक्कर लगाता हूं, पूरा चक्कर एक बाबा रहा है देख, पूरा चक्कर दो बाबा कुछ कह दो, पूरा चक्कर तीन बाबा बड़ा हसीन, पूरा चक्कर चार बाबा करता प्यार, पूरा चक्कर पांच बाबा से रहो सांच, पूरा चक्कर छह बाबा कितने अच्छे, पूरा चक्कर सात बाबा मेरे साथ, पूरा चक्कर आठ पढ़ो प्रेम का पाठ, पूरा चक्कर नौ बाबा से लगी लो, पूरा चक्कर दस बाबा कहते बस। अब याद तो करना है, अब याद तो करना है, कैसे करना है तो मैं इसको करता हूं, मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। ऐसे करके ये कर्म योग करते रहें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। निरंतर योगी बनना है तो करना पड़ेगा। छठी पॉइंट है अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करना, एकांत बैठना। और सातवीं पॉइंट है रोज रात को सोने से पहले बाबा को पूरा अपना चार्ट देना, सबसे क्षमा मांग लेना, सबको क्षमा दान देना, और सबसे बड़ी बात है धन्यवाद करना, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को थैंक्स करते जाओ, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बहनों, थैंक यू मधुबन, थैंक यू मधुबन निवासी, थैंक यू ये वातावरण, और प्यारे बाबा को थैंक यू। ओम शांति।